क्या कभी गौर किया, एक ही मट्टी पानी से जुदा जुदा फल फूल कैसे लाती है? देखिए ना, कहीं मट्टी सुर्ख तो नहीं होती, ऑरेंज तो नहीं होती ना, पिंक तो नहीं होती, लेकिन इतने मुख्तलिफ रंगों के फल कहाँ से आते हैं? चुरिंद और परिंद की पैदाइश पे भी गौर करके देखिए, कैसे नन्ही जाने अपने वजूद को लेके चल फिर रही होती हैं। फिर इस तरह रात और दिन मौसमों के आने जाने को देखिए, कैसे कायनात का पहिया घूमता है और चीज दूसरी तरफ चली जाती है। फिर इसे सूरज चांद की तख्लीक पे गौर कीजिए, इंसान की पैदाइश के मराहिल पर गौर कीजिए, तो आप कह उठेंगे कि फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। और इसी तरह सूरज जुमर की आयत 5 में भी तो अल्लाह ने यही बात फरमाई, खलक समावाति वल अर्द बिल हक युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ। इसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, यानी हिकमतें हैं उसकी, और वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर, और इसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है, यानी उनको मुसख्खर किया हुआ, सब एक वक्ते मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब और बख्शने वाला है। तो फिर आपने मैंने गौर करना, प्लान कीजिए कि वॉक करने कब जाना है, इससे इंशाल्लाह आपको आसूदगी मिलेगी। और वैसे भी इंसान थोड़ी देर के लिए बाहर जब जाता है, इतनी मुख्तलिफ चीजें दिखती हैं ना, तो तवज्जो अपनी तरफ से हट जाती है। चलिए अगली टिप देखिए, हिर्स सूदमंद नहीं होती, यानी लालच से कभी फायदा नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नफ्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक अपने मुकद्दर में लिखी रोजी और उम्र की तकमील न कर ले, तब जजा फजा क्यों, हिर्स और लालच क्यों आए जब हर चीज तयशुदा और मुकर्रर है? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक हर चीज एक अंदाजे से है और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहता है। तो फिर क्या समझे आप और मैं कि मेरा नसीब तो मुकर्रर है, हिर्स कर लू लालच कर लू, जो है वो तो है, पता नहीं जो है उसकी लज्जत भी ना चली जाए, तो क्या नतायज है हिर्स के? दिल की सख्ती। जी, दिल सख्त होता है लालच से, इस तरह अल्लाह से नाउमीदी होती है, तकदीर पे राजी नहीं रहता इंसान, हुस्नो मलाल और मायूसी उसके अंदर आने लगती है। और इस बात को अल्लाह के नबी ने कैसे फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है सिलसिला सहीहा में 175, रिस्क को मौखर न समझो, कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपने मुकद्दर में लिखे हुए रिस्क की तकमील नहीं कर लेता। एतदाल के साथ तलब करो, यानी हलाल चीज इस्तेमाल करो और हराम को तर्क कर दो। तो फिर फिक्र किस बात की है, क्या सीखा? अमल की चंद बातें लीजिए जो अभी तक सीखा। अपनी जिंदगी को खुशियों और दिल को इत्मीनान से भरने के लिए लोगों को आसानियां फराहम करनी है, हर अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए करना है, अपने दिल को हर किस्म के लालच और हिर्स से पाक रखना है, और अल्लाह के जिक्र से जुबान को तर रखना है। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ तो कम होगा ना, और खास तौर पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से गम दूर होता है। अगली टिप लीजिए, कभी भी कोई परेशानी आए तो खुद से कहिए कि परेशानियां आपके गुनाहों का कफारा बन जाएंगी, तो सस्ते छुटे ना, वहां जाकर जो मुख्तलिफ गुनाहों को बख्शवाना पड़ा, तो दुनिया में अगर कोई परेशानी आ गई तो अल्लाह गुनाह भी तो माफ करते हैं। इब्नुल मोतस शायर के बारे में ये मनकूल है कि कहा करता था कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, इससे अच्छी सवारी किसी की नहीं होती, यानी तवक्कुल को अपनी सवारी बना लो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है इससे तेज सफर किसी का नहीं होता। और सही हदीस में वारित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी रंजो फिकर परेशानी थकान और दुख तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कोई कांटा भी इसे लगता है, तो अल्लाह इसके जरिए इसके गुनाहों का कफारा कर देगा। ये वही कर सकता है जो सब्र करे, सवाब की उम्मीद रखे, इनाबत इख्तियार करे और ये यकीन रखे इसका मामला अल्लाह वाहिद वहाब से है। मतबनी ने अपने हकीमाना बयानात में, यानी जो उसके अशार थे, उसमें बात चीजें ऐसी लिखी जिससे इंसान को कुव्वत मिलती है और शरह सदर होता है। जमाने से बेपरवाही से मिलो, जब तुम्हारी जान में जान है, जो चीज खुशकुन है वो हमेशा नहीं रह सकती और गम कभी गायब को लौटा नहीं सकता। बात समझ गए होंगे, कहते अपने आप को लापरवाह रखो, बेपरवाही से मिलो जमाने के मसाइल, आज ये मसला, ये बुरा वक्त खराब हो गया, इस तरह के गिले ना करो, अच्छी चीज को एंजॉय करो, और जो चली गई है वो तो वापस आनी कोई नहीं तुम्हारे रोने धोने से। और कुरान कहता है फौत शुदा चीज पर तुम गम ना करो, फला ता सलामा फातकुम, सूरह हदीद की आयत है। और जो अल्लाह ने दिया इस पर इतराओ भी नहीं, वला तफरहू या यफरहू दोनों ही लफ्ज आते हैं कुरान में, तो फिर क्या सीखा, ये सोच लिया करें कि परेशानियां मेरे गुनाहों के कफारे बन जाएंगी, तो फिर मुझे तो फिक्र ही करने की जरूरत नहीं है। सवाल पैदा होता है कि परेशानी में क्या करें, तो लिखिए सब्र कीजिए, सवाब की उम्मीद रखिए, अल्लाह से रजू और आजजी इख्तियार कीजिए, और अल्लाह तला से अच्छी उम्मीद रखिए। आप ये काम करके देखिए, परेशानी भूल भी जाएगी। मुस्लिम की रिवायत 6568 कि मोमिन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता के कोई फिक्र भी जो इसे फिक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। देखिए आपको भी शायद थकन हुई हो, थोड़ी देर से आप बैठे हैं, थकन हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। आप सोचिए कि आपको इसके बदले में जन्नत का कोई आला मुकाम मिल जाए, कोई जहन्नुम का कांटा आपके रास्ते से हट जाए, अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद कर दे, तो क्या ये तकलीफ याद रहेगी? नहीं याद रहती। तो जिंदगी में हमेशा इन चीजों को रखिए कि मैंने छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखिएगा कि अपने आप को टाइम दीजिए, देना पड़ता है। ओवरनाइट पौधा नहीं उगता, बेबी पैदा नहीं होता। कायनात का असूल है कि हर चीज वक्त मांगती है। और दूसरी बात, दिल की तख्ती पे लिख लीजिए, हम में से कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही हस्ती है और वो अल्लाह की है। ऐब से पाक, नक्स से पाक, कमियों से पाक, हमारे अच्छे अच्छे कामों में भी कमियां रह जाती हैं, और ये कमियां ही तो हमें आगे लेकर चलती हैं। तो आइए देखिए जरा फिर उस अल्लाह पर तवक्कुल करके बंदा कैसा महसूस करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अल्लाह काफी है, ये कहना आसान है, करके देखिए इसकी लज्जत, बोलिए हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है। हम कहते कितनी दफा वजीफा करना है, कैसे पढ़ना है, वजू करना है, नहीं किबला रुख होना है, नहीं तस्बीह पकड़नी है, नहीं, छोड़िए आपने ऊपर लेकर के मुझे मेरा अल्लाह काफी है, बस। ये कोई पुरतकल्लुफ जुमला नहीं है, ये कोई तोल तोल के और नाप नाप के बोलने वाला वजीफा नहीं है, ये आपका अकीदा है, ये आपकी सोच है। हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये जुमला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा जब आग में डाले जा रहे थे, तो आग इनके लिए ठंडक और सलामती बन गई। मैदाने उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा तो अल्लाह ने आपको नुसरत से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक यानी गुलेल टाइप की एक चीज होती है, आग के करीब जाते हुए तो सभी जलते, तो दूर से उनको किसी एक डोली नुमा चीज में डालकर पीछे से धक्का मारा, जैसे तोप से गोला निकलता है, इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। उसी की तरफ इशारा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखा गया, जिब्राइल हाजिर होकर बोले क्या मुझसे कोई जरूरत है? जैसे किसी भी मुश्किल में हो तो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड माई हेल्प, हाँ, फरमाया तुमसे तो नहीं मगर अल्लाह से यकीनन है। लिख लीजिए इसको, ये जुमला बहुत खूबसूरत जुमला होता है, आप दुआ कर लीजिए असल काम तो मुझे अल्लाह से। समंदर की खासियत है डुबोना और आग की है जलाना, लेकिन हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील कहने के सबब एक खुश्क हो गया और दूसरी बुझ गई। समंदर किसके लिए खुश्क हुआ था? हजरत मूसा ने सामने दरिया और पीछे दुश्मन को देखा तो फरमाया हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे हिदायत देगा। चुनाचे वो अल्लाह के इज़्ज़त से निजात पा गए। सीरत में आता है कि अल्लाह के रसूल जब गार में दाखिल हुए तो अल्लाह ने कबूतर को खिदमत पर लगा दिया, इसने घोंसला रख दिया, मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया। मुशरिकीन वहां तक आए और देखकर कहने लगे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दाखिल हुए होंगे, क्योंकि जहर अगर दाखिल होते तो जाला टूट जाता। बकौल शायर, उन्होंने मकड़ी के जाले और कबूतर के घोंसले को देखा, ये नहीं देखा कि अल्लाह ने अपनी अनायत से बहुत सी जिरहों और बड़े बड़े कलों से भी बेनियाज कर दिया। इनायत रब्बानी उस वक्त हासिल होती है जब बंदा ये यकीन करके कि अल्लाह ताला कदीर, नासिर और सच्चा दोस्त और मददगार है। इसकी तरफ यकसुई से मतवज्जे हो। शौकी ने इस मजमून को यूं अदा किया, शायर है, अगर अल्लाह की इनायत हो जाए तो सारे के सारे हादसे और अलमिए अमनो अमान बन जाएं। और अल्लाह तो कहते हैं आप हमारी निगरानी में हैं, इन्ना कफी या युनीना, और अल्लाह ताला बेहतरीन मुखाफिज और अरहमुर राहिमीन। तो क्या सीखा, दिल की गहराई से कहिए अल्लाह हमें काफी है। जितना ज्यादा आपको इस जुमले पे यकीन आता जाएगा, आप लोगों से बेनियाज होते जाएंगे और अपने मामलात अल्लाह पे डाल देंगे। मसलन हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, अंबिया कराम का जिंदगी मौत की कशमकश में यही जुमला था और सहाबे कराम का जंगों में यही जुमला था। आज मुझे आपको अपने दुखों तकलीफों में यही कहना है और तवक्कुल होता क्या है। मिश्कात की रिवायत है 3784, जब कोशिश के बावजूद कोई खिलाफे तवक्को वाकया गालिब आ जाए तो तुम कहो मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। बस ये यकीन रखिए, ट्राई फॉर दी बेस्ट या होप फॉर दी बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। कोशिशें पूरी, उसके बाद नताइज अल्लाह के जिम्मे, इसके बाद आपको फिर किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इसी तरह के मामलात में पड़े रहते हैं और फिर अपने आप को जाया कर देते हैं। बहुत सारी चीजें जिंदगी में सिर्फ अल्लाह पे डाल देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि एक वक्त आएगा कि फिर आप बहुत सारी नहीं, सारी ही, बहुत के लफ्ज को आप निकाल देंगे और अपनी हर चीज अपने अल्लाह पर डाल देंगे। यही वो वक्त होता है जिस वक्त अल्लाह ताला की मदद आती है और अल्लाह ताला आपसे फिर राजी हो जाते हैं। तो आपने मैंने इंशाल्लाह अपने मामलात अल्लाह पर डाल देने हैं। आगे देखिए खुश नसीबी के अनासिर। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है कि आपने फरमाया, जो अपने घर में मामून होकर सोए, सेहतमंद हो, दिन भर की रोजी इसके पास हो, तो गोया दुनिया तमाम आराइशों के साथ उसे मिल गई। मानी यह है कि जब गजा मिल रही हो, मकान मौजूद हो, अमन से आदमी रहता हो, तो सबसे बड़ा खुश नसीब है, इसे बेहतरीन समरात मिल गए। अल्लाह ताला अपने रसूल के हवाले से फरमाता है, मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। सवाल यह है कि रसूल पर कौन सी नेमत तमाम हुई या उतरी, क्या मादी आसाइश? मादी आसाइश तो नहीं थी, अल्लाह के नबियों ने तो अपने लिए बहुत ही थोड़ी सी चीजें कबूल की। क्या गजा, खाना पानी या महल्लात, अच्छे मकानात और सोना चांदी? हालांकि आपके पास ये सब नहीं था तो पैगंबरे आजम और आखिरी नबी तो मट्टी के बने कमरे में सोते थे जिसकी छत पर खजूर की टहनियां डाल दी गई थी। आप अपने पेट पर दो दो पत्थर बांधते थे, खजूर की छाल से बना बिस्तर इस्तेमाल करते थे जिससे बदन में निशान पड़ जाते। अपनी जिरा यहूदी के बाद जो के 30 सवा के इवज में गिरवी रखी। 3 दिन ऐसे भी गुजरे कि खराब खजूर भी भूख मिटाने के लिए ना मिली। और शायर ने कह दिया कि आप दुनिया से इस हाल में रुखसत हुए कि थोड़े से जो के बदले जिरह रहन रखी थी। रहन की मुद्दत खत्म होने से पहले आप दुनिया को खैर बात कह गए। यतीमी के मानी और मफहूम को आपसे बेहतर किसने जाना? मेरे आका, आपको यतीमों का वाली कहा गया। देखा जाए तो बात तो दिल को हिलाने वाली है। एक और कसीदे में इस मफहूम को यूं अदा किया गया, ऊंचे और शानदार महल्लात से आपको एक अच्छे घर या एक गार ने बेनियाज कर दिया। आपने फजाइल के मजबूत बुर्ज तामीर किए और शानदार खैमों तक इनका मरकज इनको बना दिया। यानी लोगों को फिर दुनिया के घरों की तलब न रही, वो आखिरत के महल्लात को पाने की कोशिशों में खप गए, जैसे हम दुनिया के घरों के लिए खप जाते हैं। यकीनन आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। अल्लाह तुझे देगा, क्या देगा? आपका रब आपको जल्द ही देगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। और इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। हकीकत यह कि जिनकी नजरें आखिरत पे लग जाती हैं, उनको फिर दुनिया में कुछ मिल जाए तो भी और कुछ ना मिले तो भी एक ही जैसी फीलिंग्स आती हैं, कोई चेंज नहीं आती। तो फिर आपने मैंने क्या सीखा इससे, अपने आप को लेकर देखिए तो आपको इससे हकीकत में ये बात समझ आ जाएगी कि खुश नसीबी के अनासिर में से ये अंसर है। कि जो थोड़े पे कनात करे वही बेहतर है। मुसनद अहमद की रिवायत है 9266। बटी हुई रस्सी थी, यानी रस्सी से बनी हुई चारपाई थी, और आपके सर के नीचे चमड़े का तकिया था जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने आपको देखा तो आपके पहलुओं और रस्सी के दरमियान कोई कपड़ा ही नहीं है, और वो रस्सी आपके पहलुओं पे निशान छोड़ चुकी तो रोने लगे। आपने फरमाया, उमर आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे रोने की वजह यह है कि मैं जानता हूं कि किसरा और कैसर की बनिस्बत आप अल्लाह के यहां ज्यादा इज्जत वाले हैं, लेकिन वो तो दुनिया में मालो दौलत को उड़ा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल आप इस मुकाम में हैं जो मैं देख रहा हूं। आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी हो जाओगे कि ये चीजें इनके लिए दुनिया में हो और हमारे लिए आखिरत में? उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, तो फिर बात ऐसे ही है, तो फिर बात ऐसे ही है। अपने ऊपर लेकर सोचिए, जिंदगी में हम अपने गम किन चीजों को बनाए बैठे हैं, किन चीजों के साथ हमारी खुशियां और गम लटकते हैं। हम अपने आप को इस चीज से मुतल्लिक देखें कि किस तरीके से आप और मैं छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इतनी कीमती चीजें जाया करते हैं। तो फिर की कहिए कि बलल आखिरत खैरुम वाबका, बाकी भी रहने वाली है और बेहतर भी है। तो फिर अगली टिप लीजिए, जाहो मनसब। जिंदगी के बोझल कामों में जाहो मनसब भी है। जाह कहते जगह, यानी आप किसी चीज को अपने लिए बड़ा बनाते हैं। बल्कि ये जो खुश नसीबी की बातें हैं ना, इसको जरा एक नजर देखिएगा कि जो दुनिया को आरजी समझे, उसकी खुशियों को आरजी समझे, उसके गमों को आरजी समझे, वो खुश रहेगा। और ये ले लीजिए कि ये आखिरत दुनिया के मुकाबले में बहुत छोटी और हकीर है। तो फिर असल खुश नसीबी क्या है कि आखिरत की कामयाबियां मिल जाएं। हमने क्या सीखा? परेशानियों को गुनाह दूर करने का जरिया समझना है, मुश्किलों में अल्लाह को काफी जानना है, असल कामयाबी का पीछा करना है, और दुनिया के आरजी गमों की वजह से परेशान नहीं रहना। और अगली टिप लेनी है, जाहो मनसब। जा कहते हैं ओहदों को, बड़ी इज्जत ऑनरेबल, और मनसब भी आप जानते ही हैं, यानी बड़े बड़े रुतबे, बड़ी बड़ी बातें। जिंदगी के बोझल कामों में जाहो मनसब भी है। इब्नुल वर्दी कहते हैं, इस जाहो मर्तबे ने तो मेरी जिल्द भी कमजोर कर दी। रजीलों की मदारात, यानी कमजोर लोगों की खातर मदारत करनी ही पड़ती है, इसकी खातर मदारात में बहुत ही जहमत है। मतलब यह कि जाहो मर्तबे का टैक्स बहुत ही गिरा होता है, इससे चेहरे का पानी उतर जाता है और सेहत और राहत खतरे में पड़ जाती है। इन टैक्सों से चंद ही लोग बच जाते हैं। इसमें आदमी को रोजाना अपने खून पसीने से अपनी शोहरत, राहत, इज्जत और शर्फ, करामत का टैक्स देना पड़ता है। अमारत का सवाल मत करना। मुराद ये कि जो जितने आला ओहदे पे जाते हैं ना, उसको सारा दिन ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है कि अल्लाह की बना। एक दफा किसी काम की वजह से हम डीसी के ऑफिस में गए, हमें पता चला कि वो एक लेडी हैं, सिस्टर हैं, तो आप लोग जाइए और उनसे कुछ इस तरह का लीगल काम था कोई, वो पूछने के लिए इन्फॉर्मेशन लीजिए, तो मैं भी कम्युनिकेशन अच्छा हो। मेरे साथ एक दो सिस्टर्स थी और हम गए। पहले तो लाइनों में लगना हुआ, जैसे बैठे इंतजार का में, फिर जब उन्होंने कहा आपकी बारी आने वाली, आप उस ऑफिस के अंदर ही आ जाए। हम अंदर गए, यकीन करें, धोतियां पहने हुए, पगड़ियां बांधे हुए, मूछों पे बल देते हुए लोग थे। जो डीसी खातून थी और उनके पास आकर फाइलें पकड़े, अपनी सिग्नेचर्स करवाने वाले थे। बाद में फिर मुझे बताया गया कि ये ओहदा बहुत ही हसास है, कई दफा लोगों की जॉब्स खतरे में चली जाती है, कभी उनको धमकियां मिलती, क्योंकि गलत काम करने कराने वाले आते हैं कि हमारी फाइलों पे साइन कीजिए, और औरत सारा दिन उन मर्दों के साथ वास्ते में, और जो कोई अच्छे लोग नहीं दिखते इल्ला माशाल्लाह, दोनों तरह के लोगों को आना पड़ता है। कहती इनके एक सिग्नेचर से जो मर्जी शहर में हो, जिस इलाके के डीसी होते हैं उधर के, वहां आपको कोई अप्रूवल लेनी है तो वो दे देंगी, सड़क बनानी है, घर बनाना है, यानी मेरे इख्तियारात बहुत होते हैं, कोई अच्छे यूज करे तो अच्छे होंगे, बुरे करे तो बुरे। तो मैंने कहा, मैं तो कभी भी किसी औरत को रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो डीसी बने, इल्ला माशाल्लाह। तो याद रखिए कि ओहदों में पढ़कर फिर बंदे को हर तरह के लोगों से वास्ता तो पड़ता ही है। इसी को इधर इन्होंने टैक्स कहा है, दूध पिलाने वाली क्या खूब होती है और दूध छुड़ाने वाली कितनी खराब होती है। यानी माँ दूध पिलाए तो बड़ी अच्छी और दूध छुड़ाए तो बुरी। मेरा इक्तदार मुझसे छिन गया, मुरादे की क्यामत के दिन ये बड़े बड़े जाहो मनसब भी काम नहीं आने। हलकन्नी सुल्तानिया, शायर कहता है फर्ज कर लो कि दुनिया तुम्हें मुफ्त में मिल जाए, लेकिन क्या इसका इंजाम जवाल नहीं है? पूछिए खुद से। मिल भी गई, मुफ्त में मिल गई तो बाद में क्या खत्म? सोचिए कि दुनिया की हर चीज आपको मिल जाए, लेकिन इसका इंजाम क्या होगा? फना और जवाल, और तेरा जलाल व अजमत वाला रब बाकी रहेगा। वह यब का वजह रबी का जुल जलाली वल इकराम। सालेहीन में से एक ने अपने बेटे से कहा, बेटे सरदारी की तमन्ना ना करो, क्योंकि सरदारी बहुत तकलीफ दह चीज है। मतलब यह कि हमेशा सरदारी ना चाहो, क्योंकि गालम क्लोच, हड़तालें और नाराजगी, कायद से तो लोग अक्सर नाराज ही रहते हैं और जिम्मेदारियों के खिलाफ ही होती है। और एक शायर ने तो ये तक कहा कि जो बरसरे इक्तदार हो, अगर बदले इंसाफ भी करे, तब भी आधे लोग इसके दुश्मन होते हैं। जाहिर है कौन दुश्मन होंगे? जिनके गलत काम नहीं चलेंगे उसके आने से, जो उससे गलत कामों पे सिग्नेचर्स करवाना चाहेंगे। तो फिर क्या सीखा आपने मैंने इससे? तमन्ना ना कीजिए। सही मुस्लिम की ये रिवायत है 4281 के, बिन मांगे मिल जाए तो मुश्किल बात है जो भी है, लेकिन तमन्ना ना करो। अगर वो तुम्हें मांगने पर दी गई तो तुम इसके हवाले कर दिए जाओगे। यानी आज तो वोट मांगे जाते हैं, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही इस पे है, मुझे चूज करो। हालांकि आप पढ़ के देख लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर बाद के चारों खुलफा तक लोग खुश नहीं होते थे जब उनको ओहदे मिलते थे। इसी तरह बासवा दीन के काम करने पर ओहदे मिलते हैं, देने पड़ते हैं। जाहिर कोई टाइटल तो होगा ना कि अच्छा जी आप जिम्मेदार हैं, आप अंसार हैं, आप ग्रुप एडमिन हैं, आप क्लास एडमिन हैं, आप फुला फुला। बासवा लोग इसी से ही बड़ा लगता है कि ये इतने बड़े रुतबे, लेकिन जरा पूछिए तो सही उनकी जिम्मेदारी की हद क्या है? आपको यहां बिठाया हुआ कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट करें और आप कुछ और करने लग जाएं, फिर क्या होगा? आप जूम के रूम में हैं और आप पूरी जिम्मेदारी से काम ना कर पाए तो कितने लोग आपसे पूछेंगे? और कोई भी ना पूछे, याद रखिएगा। इसलिए भी जाहो रुतबे नहीं मांगने चाहिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। राय कहते चरवाहे को, शेफर्ड को, हर इंसान किसी ना किसी मनसब पर फायज होता है, और जहां भी कोई ऐसी जिम्मेदारी है उसमें मसूलियत है। हर मनसब का सवाल होगा, जो सरदारी लेना चाहता है वो इजाफी बोझ अपने कंधों पर डालता है। बस आप देखिए कि एक जालिम बादशाह हो, गोया के वो एक बदतरीन गडरिया है, उसने अपनी रियाया के ऊपर जुल्म किया। और सही बुखारी की रिवायत 3493 में तो यहां तक है कि खलीफा चुने जाने का पैमाना क्या है, कि जो खुद खिलाफत ना मानगे। आप तो वोट उसको देते हैं ना जो मांगते हैं। इस्लाम कहते हैं उसको ओहदा दो, रुतबा दो जो नहीं मांगता। तो दिल से सारी चीजों को निकाल कर बस ये कह लीजिए कि अल्लाह ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं, हम उसका बेहतरीन हक अदा कर सकें। हक अदा किए बगैर ये चीजें जहमत है, आजमाइश है, पकड़ का जरिया है। ये वो चीजें हैं जो आपको मुश्किल में डालेंगी, और आप इनकी वजह से मुश्किल में, और वो आपकी वजह से मुश्किल में होंगी।